నమో వచ్చాయాణం నమో లోయే సాహూణం మంగళం భగవాన్ వీరో మంగళం గౌతమో గణి మంగళం కుంద కుందార్యో జైన ధర్మోస్తు మంగళం సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వకళ్యాణకారికం ప్రధానం సర్వధర్మాణాం జైనం జయతు శాసనం జైనం జయతు శాసనం. నమ సమయ సారాయ స్వానుభూత్యా చకాసితే చిస్వభావాయ భావాయ సర్వభావాంతరచ్ఛిదే వందితు సౌవ సిద్ధే ధూమచలమణోవయం గదిం పత్తి భోచ్ఛామి సమయ పాహుడ
समय सार जी परमागम शास्त्र की 137 नंबर के बहुत ही मार्मिक कलश पर अभी हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव श्री का महामंगल में प्रवचन सुना और आज का प्रवचन सुनते हुए थोड़े अपन हिल भी गए होंगे नहीं हिले है? क्या गजब का. देखो जैन शासन, हम ये समझते हैं कि हम कितना क्या कर रहे हैं, लेकिन जैन दर्शन में जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो, सबसे बड़ा पाप मिथ्यात्व का कहा गया है. और जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं हो, तब तक वास्तव में व्रत समिति आदि का पालन करते हुए भी जीव को मिथ्या दृष्टि का, पापी का. मिथ्या दृष्टि नहीं, क्या का? पापी. क्या मतलब इसका? कि देखो, सबसे पहले जैन दर्शन में एक आमनाय है अपनी. आमनाय क्या है? कि सबसे पहले बड़ा पाप छूटता है और उसके बाद में छोटा पाप छूटता है. जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि भाई साहब, एक आदमी पानी छान के पीता है और वो भी शुद्ध गर्म प्रासुक किया हुआ पीता है, लेकिन उसकी एक आदत है. क्या आदत है? कि महीने में एक बार मदिरा पान करता है वो. ठीक है ना? तो अभी जैनी के कितने लक्षण आप मानने के लिए तैयार हो? पानी छान के पीना एक लक्षण है ना अपना, तो पानी छान के पीता, ये बात अलग है कि महीने में एक बार मदिरा पान करता है, एक बार, तो आप जैनी के लक्षण मानने के लिए तैयार हो कि नहीं? उसको एक लक्षण तो मानोगे कि नहीं मानोगे? कहते हैं पानी छान के पीना अच्छी बात है, लेकिन पानी छान के पीने से पहले मदिरा पान का त्याग होना चाहिए, है ना? तो ये जो मिथ्यात्व का पाप है कि ये मदिरा पान जैसा पाप है, उदाहरण में तो मैंने एक महीने में एक दिन की बात करी है, लेकिन ये मदिरा पान मिथ्यात्व का मदिरा पान तो ऐसा है कि अनादि काल से लेकर आज तक ये मिथ्यात्व की मदिरा उतरी ही नहीं है. मोह महामद पियो अनादि. और शुभ शुभ के कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण यह है कि ये सब कुछ करके भी जब तक अंदर में मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता, मिथ्यात्व के त्याग के बिना व्रत की बात एक क्रम भंग उपदेश है. कौन सा उपदेश है? जैसे कोई आदमी कहे कि भाई साहब, आपको रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए. कि ठीक है साहब, नहीं पियेंगे. अब दूसरे दिन वो मंदिर में नहीं आए वाला आदमी, भाई क्या हुआ था? क्या हुआ था कि आपने कहा था कि रात्रि में पानी नहीं पीना चाहिए, अब झूठे मुंह मंदिर कैसे आवे हम? मैंने क्या हुआ? झूठे मुंह का मतलब क्या हुआ? कि भोजन तो किया था ना. समझ में आया कि नहीं है? तो रात्रि का पानी, उदाहरण ये कि रात्रि में पानी नहीं पीना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसके पहले रात्रि का भोजन छूटता है. मैंने रात्रि का भोजन करता हो और वो कहे कि मैं रात्रि में पानी नहीं पीता, तो आप क्या कहोगे? कि कितना बड़ा धर्मात्मा है, देखो रात्रि में पानी भी नहीं पीता. हाँ, ये बात अलग है कि भोजन करता है, तो आप क्या कहोगे? कि भाई रात्रि का पानी नहीं पीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात्रि के पानी के पहले रात्रि का भोजन छूटता है। आ गया। इसी तरह व्रत बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्रत होने के पहले मिथ्यात्व का महापाप छूटता है। गुरुदेव ने एक बहुत मार्मिक बात कही थी, पांच एक मिनट उसकी चर्चा करके अपना विषय लेते हैं अपन। एक बात गुरुदेव ने बहुत अच्छी आई थी, वैसे तो सारा ही प्रवचन हिला देने वाला था, लेकिन उसमें एक बात आई थी कि लोग क्या मानते हैं, कि देखो हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया, हमने ये त्याग किया, और अपने को क्या मानते हैं अपन लोग, धर्मात्मा मानते हैं। देखो इतना त्याग किया ना मैंने, कि मैंने इतना त्याग किया इस मान्यता का त्याग किया कि नहीं किया ये बता पहले। नहीं हाँ, नहीं तो मैं तो इसके लिए उदाहरण देता हूं कि अपन लोग होते ना, अपन लोग अभी जो नए टैक्स वैक्स के फंडे चलते ना बहुत सारे, तो अपन लोग क्या करते हैं, एक दुकान में चार फर्में चलाते हैं, नहीं चलाते, चलाते दुकान वही है, फर्म अलग अलग चलेगी, कोई एंट्री खाली एंट्री के हिसाब से फर्में अलग अलग चलती है, तो अलग अलग फर्मों का प्रोपराइटर कौन है, व्यक्ति तो एक ही है। इसी तरह अभी तक हम क्या करें, मैंने ये ग्रहण किया, 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 पहले ग्रहण करना वाला मानते थे, अभी क्या मानने लगे, मैंने इसका त्याग किया, मैंने इसका त्याग किया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। मैंने कहा भाई पहले ग्रहण चंद की फर्म थी, अब त्याग चंद की फर्म है, प्रोपराइटर मिथ्यात्व कुमार है, ये समझ लेना। समझ में ये बहुत गजब के सिद्धांत हैं जो अपने को महाभाग्य से, देखो 137 नंबर का कलश कितना गजब का, और पंडित जयचंद जी का कितनी बार आज पंडित जी गुरुदेव श्री ने नाम लिया कि पंडित जयचंद जी आज खुलासो करे छे, है ना। जब एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि सिद्धांत में मिथ्यात्व को पाप कहा, अध्यात्म शब्द का प्रयोग नहीं किया, अध्यात्म में तो कहा ही है, लेकिन सिद्धांत, सिद्धांत किसे कहते हैं, करणान योग की अपेक्षा से भी अगर आप विचार करोगे तो मिथ्यात्व का पाप भयंकर पाप है, क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति का बंध अगर किसी से पड़ता है तो मिथ्यात्व से पड़ता है। दूसरी बात कि दुनिया में कितना भी बड़े से बड़ा पाप हो, उस बड़े से बड़े पाप का फल 7 नरक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा 7 नरक हो सकता है, तो भाई साहब 7 नरक तुमको ऐसे ही दिख रहे हैं? मैंने कहा हां ऐसे ही दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि 7वें नरक में भी चला गया कदाचित तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता से नहीं गया। पॉइंट समझना थोड़ा, क्या कहा, 7वें नरक में भी कोई जीव चला गया तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता खत्म नहीं हो गई उसकी, और वहां से निकल करके भी संगी पंचेंद्रीपना प्राप्त करेगा। ख्याल में आ गया। और मिथ्यात्व का फल क्या है पता है, कि मिथ्यात्व का फल है निगोद, है ना। और एक बार निगोद जाने के बाद कितने काल तक वहां रहना पड़ेगा, और कितने काल बाद वहां से निकलना होगा, और निकलने के बाद भी त्रस पर्याय में कब तक आएगा, वो कोई भरोसा नहीं है। एक समय के मिथ्यात्व का पाप, एक समय के मिथ्यात्व का पाप उसमें निगोद के अनंत भव करने की ताकत है ना? पाप का फल नरकादि गति है, तो नरकादि गतियों से, मैंने नरक और तिरंज गतियों से भी, ये दो इससे भी निगोद ज्यादा खतरनाक है, ये ज्यादा खतरनाक है। जरा विचार तो करो। ये कहकर के जो हम बाहर, हम ये समझते हैं ना कि हमने बाहर में ये पाप छोड़ दिया, हमने ये पाप छोड़ दिया, हमने गुप्त रहे, ये छोटे मोटे पापों की तो बात कौन करे। यहां तो कहा कि अनुव्रत महाव्रत समिति आदि का निरतिचार पालन करता हो और अंदर में मिथ्यात्व तो नहीं छोड़े, तो जिनवाणी कहती है कि वो 9वें ग्रेवे के जाने वाला पापी है। और नरक जाने वाले की तो कौन बात करे, 9वें ग्रेवे जा रहा है ना तो भी कहते वो पापी है। क्यों? क्योंकि आत्मा की विराधना का परिणाम लेकर के साथ में गया है। बोलो, ये सिद्धांत की ओर से ये बात सिद्ध की। ये बात सुनकर के अपने को क्या लगना चाहिए कि जीवन में अपन लोगों ने कसाई की तीव्रता रूप पाप को छोड़कर कसाई की मंदता रूप पाप तो पुण्य तो अनंत बार किया, लेकिन एक समय के लिए भी अपन ने मिथ्यात्व का अभाव नहीं किया। और देखो सच्चाई क्या है, कि सच्चाई यह है कि वो जो कषाय की मंदता है ना, कि उसको व्यवहार से ही पुण्य कहा है। ये कहा था ना कि व्यवहारी जीवों को व्यवहार में लगाने, अशुभ से छुड़ा के शुभ में लगाने को कथनचित पुण्य भी कहते हैं, पुण्य भी कहते हैं। देखो वहां शब्द का प्रयोग क्या किया है, एक एक शब्द में जान दो कि वहां कथनचित पुण्य भी कहते हैं। इस बात में कथनचित शब्द लगाया और भी शब्द लगाया, और वहां क्या कहा, अध्यात्म में जब तक मिथ्यात्व है तब तक अध्यात्म में शुभाशुभ सर्व क्रियाओं को या सर्व परिणामों को क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा पाप ही कहा जाता है। मैंने जहां पाप ही कहा जाता है वहां शब्द का प्रयोग किया ही। मैंने वास्तविकता तो यही है कि जब तक मिथ्यात्व तो नहीं जाएगा तब तक तुम कितना भी कुछ कर लो, कि नहीं नहीं हमने तो इतना पाप तो छोड़ दिया, इतना पाप तो छोड़ दिया, कि महापाप छोड़ा कि नहीं छोड़ा, महापाप नहीं छोड़ा तो इन पापों के छोड़ने की कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी तेरे को कसाय की मंदता दिख रही है, और कसाय की मंदता में पुण्य का उदय बंद होगा, पुण्य का बंद होगा, पुण्य का उदय आएगा, उदय आएगा, सुख बुद्धि लेकर के भोगेगा, फिर जाएगा पाप में, उसमें क्या दम है। थोड़ा ऊंचा चला गया तो, ऊंचा चला गया तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया उसमें, है ना। इसलिए जो मूल बात है कि मिथ्यात्व के त्याग पर सारा वजन है। जैन दर्शन में जब तक मिथ्यात्व का त्याग नहीं होता, जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता, जब तक स्वरूप दृष्टि में नहीं आता, तब तक हमने कसाय की मंदता करके बहुत बड़ा काम कर लिया। कहते इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि ऐसी कसाय की मंदता पूर्व काल के अनंत भवों में अनंत बार करने पर भी हम निगोद जाने से नहीं बचे थे। नहीं है पंच प्रावर्तन की सब कहानी है ना। और एक आज उदाहरण दिया था गुरुदेव ने, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 14 नंबर की गाथा का, वो अपने इस विषय से संबंधित भी है समझ लो। 14 नंबर की गाथा का उदाहरण क्या दिया था बताओ, क्या उदाहरण दिया था, कि ए भगवान आत्मा, कर्मकृत रागादि और शरीर आदि से असंयुक्त होने पर भी है तो कैसा, कर्मकृत रागादि और कर्मकृत शरीर आदि, माने कर्मकृत घाती कर्म उसके निमित्त से हुए रागादि, तो उन्होंने कहा कर्मकृत रागादि। क्यों, क्योंकि स्वभाव रागादि का कर्ता नहीं है। तो स्वभाव कर्ता नहीं है तो कर्ता कौन है ये बताओ। हमारी आदत है ना, पंचायत में पढ़ने की ज्यादा आदत है अपन लोगों को, अपने से कहे कि तू आत्मा रागादि का करता, अच्छा नहीं है तो कौन करता, नहीं है तो तुम करता बताओ फिर कौन करता है। अरे तू करता नहीं है तू तो प्रसन्न हो जाना, कि नहीं 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 इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे पहले करता बताओ, मैं करता नहीं हूं तो करता कौन है ये बताओ। तू करता नहीं है तेरे को मजा नहीं आया, नहीं नहीं करता बताओ। तो फिर आचार्य ने कहा कर्मकृत, स्वभाव करता नहीं है तो रागादि का करता कौन हुआ, कि कर्मकृत, कर्म निमित्तक नहीं कहा वहां पे, है निमित्त लेकिन उसको क्या कहा, कि कर्ता कहा। क्यों, क्योंकि स्वभाव को अकर्ता बताना है। तो उन्होंने कहा कर्मकृत रागादि और कर्मकृत शरीर आदि, नौ कर्म है ना, शरीर आदि नौ कर्म है, और नौ कर्म द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं, और इधर जो रागादि भाव है ना कि वो भी द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, उससे नहीं होते लेकिन उसके निमित्त में उपयोग जोड़े तो होते हैं। तो उसको स्वभाव को अकर्ता कहना है, स्वभाव अकर्ता है तो आपको कर्ता बताना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना अज्ञानी का कलेजा ठंडा नहीं होगा, चैन नहीं पड़ेगी उसको। तो फिर आचार्य को कहना पड़ा कि हां कर्ता है इसका, कौन करता है, कि कर्म करता है। क्यों, और कर्म करता है ना, और ऐसा होने पर भी उनसे भगवान आत्मा असंयुक्त है। कभी असंयुक्त है कि जिस समय वो शरीर आदि संयोग में चल रहे हैं, जिस समय वो राग आदि परिणाम दिखाई दे रहे हैं, वो संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है असंयुक्त, और संयुक्त जैसा प्रतिभासित होता है, कहते ये जो प्रतिभास है तेरा, कि ये प्रतिभास भव का बीज है। बोलो
है ना, ये बहुत 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 गजब की बात आई थी। अब अपनी जो चर्चा चल रही है 181, 82, 83 गाथा, गजब की गाथा है। कल अपन ने थोड़ी इसकी टीका शुरू की थी, देखो बहुत अच्छी टीका है भैया, है ना, कोशिश करेंगे अपन पूरी हो जाए, और नहीं हो तो भी जितना भाव अपने को समझ में आए उतना अपन समझें इसको। और मूल में तो क्या है कि ये दो की भिन्नता अपने को ख्याल में आवे, है ना। आचार्य देव कहां तक भिन्नता की बात को ले गए हैं, है ना, प्रदेश भेद की चर्चा कह करके वो ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ भिन्न है, उससे तू अपने को एकदम निराला देख, एकदम निराला देख। ये बात यहां पे कह रहे हैं, यहां तक अपनी चर्चा हुई थी कि वास्तव में शुरुआत कहां से उठाई, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, यहां से शुरुआत की थी। देखो जहां तक चर्चा चल चुकी उसको मैं फिर पढ़ लेता हूं कि वास्तव में एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती ये नियम, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं। प्रदेश भिन्न है मैंने, सब कुछ भिन्न हो गया। आगे देखो, इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, मतलब दो वस्तुओं की सत्ता कभी एक नहीं होती, दो वस्तुओं की एक सत्ता है इस बात की सिद्धि नहीं होती, अनुपपत्ति, अनुपपत्ति माने ऐसी सिद्धि होती नहीं है। यह पहले उन्होंने एक अपने सामने कानून की धारा रखी और उस धारा को फिर अप्लाई करते हैं। अभी इधर देखो, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि भाई दो कह रहे हो ना आप, जब आप दो कह रहे हो तो दो कह रहे हो तो एक का दूसरे रूप नहीं होना, तभी तो दो की सिद्धि होगी। अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप हो जाए तो फिर आप दो वस्तु सिद्ध कैसे करोगे? मैंने दो दो कब है कि जब एक दूसरे में नहीं है तब तो वो दो है, अगर एक का अस्तित्व दूसरे में हो तो फिर एक का अस्तित्व दूसरे में होने पर होने की स्थिति में दो अस्तित्व की आवश्यकता क्या है? आगे समझ में, जब दो अस्तित्व भी आप कह रहे हो कि दोनों की सत्ता भिन्न भिन्न है, तो भिन्न भिन्न है इसका मतलब क्या हुआ कि एक की सत्ता का दूसरे की सत्ता में अभाव है। देखो गुरुदेव श्री का एक बहुत अच्छा बोल आया है, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पर्याय दृष्टि विनेश्वर पुस्तक है ना, उसमें बहुत गजब का एक बोल आया कि देखो शरीर और आत्मा भिन्न है। उन्होंने कहा ये तो लौकिक नीति के वचन है। क्या शब्द का प्रयोग किया? मतलब जिसे शरीर और आत्मा एक में एक दिखाई देते हैं कहते हैं वो तो लोक में भी नीतिवान नहीं है। क्या मतलब इसका? क्या कहा, समझ आया? वो तो लोक में भी नीतिवान नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि अरे जिसे शरीर की क्रिया का कर्ता आत्मा दिखाई देता है वो तो अनैतिक पुरुष है, और अनैतिक पुरुष को ना अनुव्रत होते हैं, ना महाव्रत होते हैं, ना सम्य दर्शन होता है। क्या कहा? सम्य दर्शन में अनिति अन्याय अवक्ष का त्याग की बात आती है ना, तो वो अन्याय अनिति अवक्ष बाहर में दिखता है सबको, ये नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ये शरीर की क्रिया नहीं की, मैंने ऐसी क्रिया की, कहते इससे बड़ी अनीति कोई हो ही नहीं सकती, वो अनीति दिखाई नहीं देती। आगे बात समझ में, तो वो नीति क्या कहती है कि नीति ये कहती है कि उन्होंने गुरुदेव श्री ने कहा कि शरीर और आत्मा भिन्न है, ये तो लौकिक नीति के वचन है। अध्यात्म नीति तो यह है कि राग और आत्मा भिन्न है। एक जगह गुरुदेव ने कहा, प्रवचन में आया, उनने कहा कि राग और आत्मा के बीच में अभाव है ना, कहा कौन सा अभाव है, तो गुरुदेव ने कहा अत्यंत अभाव है। फिर गुरुदेव ने और भी खुलासा किया, अभी मेरा 47 शक्तियों के प्रवचन में विषय आया, गुरुदेव ने कहा कि देखो ये अत्यंत अभाव वो प्राग भाव प्रध्वंस अभाव अन्योन्य अभाव अत्यंत अभाव वाला अत्यंत अभाव नहीं है, ये अध्यात्म का अत्यंत अभाव है। क्या कहा उसमें? उसमें कि जैसे वहां वहां भी वही बात है ना कि भाई वो जो अत्यंत अभाव है ना वो तो दो द्रव्यों के बीच में लगता है, है ना, सामान्य रूप से दो लोग कहेंगे कि ये तो साहब ये तो पर्याय है, ये तो आत्मा की राग की राग तो आत्मा की पर्याय है,
तो कहते हैं कि ये अध्यात्म का अत्यंत अभाव है।
जैसे वो दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं होती, तो नहीं होती तो वो जो अत्यंत अभाव है, वो अत्यंत अभाव दो वस्तु की सर्वथा भिन्नता को प्रकाशित करता है या कथंचित भिन्नता को प्रकाशित करता है, ये बताओ। सर्वथा भिन्नता को या कथंचित भिन्नता को? सर्वथा भिन्नता को। तो इसी तरह जब अध्यात्म में ये राग और आत्मा के बीच में अत्यंत अभाव की बात गुरुदेव श्री करते हैं, कहते हैं ये अध्यात्म का अत्यंत अभाव है ना, तो क्योंकि वहां तो दूसरे द्रव्य से भिन्नता की बात की, यहां राग से भिन्नता की बात की, तो ये अध्यात्म का अत्यंत अभाव है। तो जैसे वो अत्यंत अभाव दो द्रव्यों की सत्ता को सर्वथा भिन्न सिद्ध करता है, इसी तरह जब तक राग और आत्मा की सत्ता सर्वथा भिन्न ख्याल में नहीं आवे, तब तक हमने इस अत्यंत अभाव को नहीं माना। 294 नंबर की गाथा में यह बात कही कि राग और आत्मा एक दिखाई देते हैं, ये चेत चेतक संबंध की अति निकटता के कारण, एक वस्तुत्व के कारण नहीं, क्योंकि एक वस्तुपना तो है ही नहीं उनमें। अरे अगर एक वस्तुपना हो तो फिर एक के अभाव में देखो, जैसे ज्ञान है और राग है, अभी और समझो थोड़ा विषय को समझने का प्रयत्न करें अपन, तो कि ज्ञान है और राग है, ज्ञान के अभाव में आत्मा का अभाव होता है, क्या कहा? ज्ञान के अभाव में आत्मा का अभाव और आत्मा के अभाव में ज्ञान का अभाव, बराबर है ना? मैंने ज्ञान नहीं हो तो आत्मा नहीं हो सकता और आत्मा नहीं हो तो ज्ञान नहीं हो सकता, तो ज्ञान और आत्मा में क्या है? एक वस्तुत्व है, बराबर है। इसी तरह राग और आत्मा में है क्या व्यवस्था? कि राग नहीं हो तो आत्मा का अभाव हो जाए, ऐसा है क्या? आत्मा नहीं हो और राग हो कि ऐसा नहीं होता। देखो ध्यान से सुनना इस बात को जरा, कि आत्मा होगा वही राग होगा, क्योंकि अगर आत्मा नहीं हो और राग होने लगे तो जड़ में राग होने लगेगा, ऐसी बात नहीं है। नहीं होने पर भी राग इसलिए नहीं होता कि आत्मा है, समझ में आई पॉइंट? समझ में आएगी नहीं है? आत्मा ना हो तो राग नहीं हो सकता, लेकिन राग आत्मा है इसलिए होता है कि ऐसी बात नहीं है, क्यों? कि यदि ऐसा हो तो राग के अभाव में आत्मा का भी अभाव सिद्ध होगा। दूसरी और एक बात लेवे अपन, और उदाहरण से लेवे, शक्कर होती ना, शक्कर तो शक्कर के अंदर मीठापन भी होता है और उसी शक्कर में मेल भी होता है, होता है। और जब अपन कोई बड़ा कार्यक्रम करते हैं, रसोई वगैरह करते हैं, तो एक केमिकल डालते हैं, तो केमिकल डालने में उसमें से मेल कटता है, क्या कहते हैं हमारी भाषा में, हमारे यहां राजस्थान में ऐसा बोलते हैं कि वो जो मिठाई वगैरह बनानी होती है ना, तो कहते हैं मेल काटो, इसका मेल निकालो, मेल काटो, तो वो एक केमिकल डालते हैं उसमें, तो केमिकल डालते हैं तो मेल अलग हो गया। तो मैंने कहा देखो भैया, तुम ये जो काटने पीटने की बात करते हो ना, तो कहीं गलती से ऐसा नहीं हो जाए कि इसमें से मिठास कट जाए? तो वो फिर लोग मेरे से कहते कि तुम पंडितों को इसीलिए ये काम नहीं सौंपते हम लोग, कि तुमको पता ही नहीं कि क्या कटता है। अरे भाई साहब चिंता नहीं करो, मेल कटेगा, मिठास नहीं कटेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों होता है? कि बस वही आपका समय सार वाली बात है कि स्वभाव नहीं कटता, विभाव कटा हुआ ही है। जो जुदा मुझसे हुआ वो जुदा पहले से था, कि अगर वो पहले से भिन्न नहीं होता तो वो कटता नहीं। मिठास चीनी से भिन्न नहीं हो सकती और मेल कभी चीनी का स्वभाव नहीं हो सकता। एक जगह है लेकिन एक नहीं है, एक नहीं है, एक अगर देखो एक जगह नहीं होते, ध्यान से सुनना जरा बात को, कि अगर एक जगह नहीं होते मिठास और मेल, अगर एक जगह नहीं होते तो तुम्हें केमिकल डालने की भी जरूरत नहीं थी, एक पॉइंट। और अगर वो एक होते तो केमिकल डाल करके भी अलग नहीं हो सकते थे, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? तो इसी तरह राग और आत्मा एक जगह नहीं होते, तो आपको और हमको ये प्रदेश भेद की बात करके, भिन्नता की बात करके, अत्यंत अभाव की बात करके, है ना, एक वस्तुपना नहीं है, चेत्य चेत्य संबंध की निकटता के कारण तुझे ऐसा भ्रम हो गया है, वास्तव में ऐसा है नहीं, ये इतनी बातें हमें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती यदि आत्मा और राग एक जगह नहीं होता तो। तो एक जगह तो हुआ, हमने एक जगह होने को एक वस्तु मान लिया, ये गलती हो गई। क्या कहा है, एक जगह है ये, एक जगह हो रहे हैं ये दोनों, एक जगह होने को हमने एक वस्तु मान लिया, तब आचार्य को कहना पड़ा कि भाई साहब ये वस्तुएं न्यारी है, और इसलिए जब वस्तुएं न्यारी है तो सचमुच इनकी जगह भी न्यारी है। आत्मा की जगह में राग नहीं और राग की जगह में आत्मा नहीं, क्यों? क्योंकि राग का अभाव हो जाता है तो आत्मा का अभाव नहीं होता, और आत्मा बना रहता है और राग का अभाव हो जाता है। ऐसी बातें हैं, समझने का प्रयत्न करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, खाली नजर की बात है, केवल नजर की बात, राग राग के राग राग में पड़ा रहे, आत्मा आत्मा में, राग राग में, कोई तकलीफ नहीं है, केवल नजर बदलने की बात है। वेद ज्ञान नजर का खेल है, वेद ज्ञान किसका खेल है, कि नजर का खेल है, हम अलग अलग फेंको, कहां फेंकने जाओगे, भेद ज्ञान माना नजर में आ जाए कि ये न्यारे न्यारे हैं, पड़े रहे कहीं पड़े रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें न्यारे हैं ये ख्याल में आ गया, काम हो गया अपना, बराबर। वो यहां पे कह रहे हैं देखो, क्योंकि दोनों के प्रदेश भिन्न हैं इसलिए उनमें एक सत्ता की अनुपपत्ति है, अर्थात दोनों की सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। कितनी गजब की बात करें, और इस प्रकार जबकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, और इस प्रकार जबकि पहले कानून की धारा रखी, और धारा रखने के बाद बताया यदि ऐसी वस्तु की व्यवस्था है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, तब एक के साथ दूसरे दूसरी को आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं, है आधार आदेश संबंध भी, माने दूसरे संबंधों की तो कल्पना तुम करो ही मत, कर्ता कर्म संबंध, सो स्वामी संबंध, भोक्ता भोग्य, ये सारे इन ये संबंधों की तो कल्पना करो ही मत, आधार आदेश संबंध भी, आधार आदेश संबंध भी कहकर के अन्य सभी संबंध तो है ही नहीं, आधार आदेश संबंध भी, और फिर क्या कहा, है ही नहीं, ही शब्द का प्रयोग किया। लोग कहते हैं जैन दर्शन में ही नहीं होता, क्या कहते हैं लोग, जैन दर्शन में ही होता है नहीं, जैन दर्शन में तो भी होता है। मैंने कहा भाई साहब जैन दर्शन में ही होता है और जैन दर्शन में ही भी होता है, लेकिन कहां ही होता है और कहां भी होता है इसका विवेक भी जैन दर्शन में ही होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, है ना, तो क्या है ही, अरे ही लगाएगा नहीं, जब लगाए जब अपेक्षा को क्लियर कर दिया गया वहां ही का ही प्रयोग होता है, जहां अपेक्षा बताई नहीं जाती और दूसरी अपेक्षा भी साइलेंट रूप से खड़ी है वहां भी का प्रयोग होता है। कहां भी का प्रयोग करना, कहां ही का प्रयोग करना, कब भी का प्रयोग करना, कब ही का प्रयोग करना, कैसे भी का प्रयोग करना और कैसे ही का प्रयोग करना, वो सारी कला जैन दर्शन के पास है, ये समझ लेना। वो यहां पे कह रहे हैं कि आधार आदेश संबंध भी है ही नहीं, है ही नहीं, आ गया। देखो इसलिए प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप, प्रत्येक वस्तु जो भी वस्तु होगी कि वो प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप अर्थात दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आदेश संबंध है। क्या मतलब, कि हर वस्तु दृढ़ता पूर्वक माने पर वस्तु में रंच मात्र भी मिले बिना अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। अरे पंचास्तिकाय में तो ऐसा लिया कि ये जो स्कंद का महा स्कंद, ये जो स्कंद का ढेर, पुद्गल परमाणुओं का ढेर, ये जो स्कंद तुमको दिखाई देता है ना, और जो तुमको ऐसा लगता है कि ये सब एक ही हो गए, तो वो आचार्य भगवान कहते हैं कि स्कंद में भी एक परमाणु दूसरे परमाणु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव को स्पर्श नहीं करता, एक एक परमाणु अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो उसका स्वचतुष्ट है और वो अपने स्वचतुष्ट में रहता है। एक जगह दिखता है लेकिन एक होता नहीं है। और हमें क्या होगी तकलीफ कि एक जगह दिखने में हमें एक पने का भ्रम हो गया। एक जगह दिखना और एक होना कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अगर वस्तु अपने स्वरूप को छोड़ दे, अपनी मर्यादा को छोड़ दे, तो वस्तु ही नहीं है। समय सार की 71 नंबर की गाथा में कहा कि जगत में जो वस्तु है वो अपने स्वभाव मात्र ही है। वस्तु की परिभाषा दी उन्होंने, वस्तु की परिभाषा क्या कि वो वस्तु अपने स्वभाव मात्र है। अगर वो दूसरे के स्वभाव में मिल जाए उस वस्तु का अभाव हो जाएगा, है ना। इसलिए आचार्य देव ने वस्तु से बात उठाई, द्रव्य की पर्याय ये बात नहीं करी उनने, क्योंकि द्रव्य की पर्याय कहते तो प्रदेश भेद सिद्ध करने में तकलीफ हो जाती, क्योंकि द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद समझा गया उसमें विरोध आएगा। या वस्तु सिद्ध किया, वस्तु सिद्ध करने के बाद फिर उसके प्रदेश भेद की चर्चा उनने की। बहुत मैंने कितनी विचक्षणता है आचार्य भगवंतों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की। वो यहां पर कह रहे हैं कि आधार आधे, देखो क्या कह रहे हैं यहां पर कि प्रत्येक वस्तु का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा रूप अर्थात दृढ़ता पूर्वक रहने रूप ही आधार आधेय संबंध है। इतनी बात उन्होंने कानून की धारा के रूप में अपने सामने रखी। जैसे मजिस्ट्रेट के सामने कोई दलील करते ना, तो अपने को कोई फैसला करवाना हो, इस टाइप का फैसला होना चाहिए, तो उस फैसले का पुष्टिकरण करने वाली तर्क और दलीलें अपने को उसके सामने रखनी पड़ती है ना। तो इतनी बात रखने के बाद अब आचार्य कहते हैं इसलिए, इसलिए माने क्या कि यह व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? तो वो सारे बिंदु आपको याद होना चाहिए वापस। क्या व्यवस्था है कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, है ना, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं रखती, क्योंकि उनमें प्रदेश भेद है, है ना, इसे अपने अपने स्वरूप में ही वो रहती है, एक दूसरे के स्वरूप में वो प्रवेश नहीं करती। ऐसी वस्तु की मर्यादा है, ऐसी वस्तु की मर्यादा होने की वजह से अब देखो यहां पर, इसलिए ज्ञान, अब देखो अब उसको प्रयोग कर रहे हैं, उसको प्रयोग कर रहे हैं उसमें, क्या कहा, इसलिए ज्ञान, ज्ञान शब्द से क्या मतलब है यहां पे, ज्ञान माने आत्मा। एक समय सार की शैली समझ लेना कि समय सार में ज्ञान शब्द ज्ञान गुण के, ज्ञान की पर्याय के लिए भी प्रयुक्त होता है, ज्ञान गुण के लिए भी प्रयुक्त होता है, और अनंत गुणात्मक भगवान आत्मा को भी समय सार में ज्ञान शब्द से कहा गया है। कहां ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है वो अपने को लगाना पड़ेगा, है ना। अनंत गुणों के प्रतिनिधित्व के रूप में भी ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है, ज्ञान गुण के लिए ही नहीं, अनंत गुणों के, अनंत गुणों का निषेध नहीं हो तो भी ज्ञान शब्द का प्रयोग आता है। क्या? आत्मा में ज्ञान मात्र भाव। आत्मा कैसा है? आत्मा ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र है तो उनने कहा कि ज्ञान मात्र है तो क्या ज्ञान के अलावा अन्य गुण नहीं है? ज्ञान मात्र कह रहे हो, परिशिष्ट में उठाया ना विषय कि ए ज्ञान मात्र कह रहे हो तो अन्य नहीं है क्या, अन्य का निषेध कर रहे हो क्या? उनने कहा कि नहीं, ज्ञान के साथ अविनाभावी अनंत गुण ज्ञान मात्र कहने से आते हैं, लेकिन ज्ञान से विरुद्ध राग आदि पर द्रव्य आदि कि इनका ज्ञान मात्र कहने से निषेध हो जाता है। कैसे? कि जैसे राष्ट्रपति के बंगले के एक बंगले पर एक प्लेट लगी है, क्या प्लेट लगी है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, है ना। वहां तो विदाउट परमिशन माने परमिशन लेके आप एडमिशन ले सकते हो, वहां तो ये है। जैन दर्शन तो कहता है नो एडमिशन, परमिशन का तो सवाल ही नहीं है, लेकिन वहां पर समझ लो ये बात लिखी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। अभी एक बात बताओ कि राष्ट्रपति की पत्नी आवे तो पहले पर्ची भेजेगी नहीं भेजेगी पर्ची कि माननीय राष्ट्रपति जी मैं आपकी धर्म पत्नी घर में आना चाहती हूं कृपया मुझे अनुमति प्रदान करें, ये पर्ची भेजेगी? राष्ट्रपति का बेटा हो तो, बेटे की बहू हो तो, अरे और तो और राष्ट्रपति के यहां झाड़ू पोछा करने वाला हो तो फिर किसके लिए है वो? मैंने झाड़ू पोछा करने वाला वो पर्ची नहीं भेजे है ना, और उसी राज्य का कलेक्टर को राष्ट्रपति से मिलना हो वो पर्ची भेजे? मतलब क्या कि जो राष्ट्रपति के परिवार का मेंबर है, समझ में आ गया, तो उसके लिए उसके निषेध के लिए वो बात नहीं है, लेकिन जो बाहर का है उसके लिए वहां पर ये बात है। वहां तो विदाउट परमिशन, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, मैंने अगर आप परमिशन लोगे तो आप एडमिशन ले सकते हो, मैंने घर में घुस सकते हो। जैन दर्शन में ये व्यवस्था भी नहीं है। मतलब क्या कि घर में दूसरे के घर में पर घर में घुसने की, एक वस्तु को दूसरे वस्तु में घुसने की कोई वस्तु व्यवस्था जैन दर्शन में है ही नहीं। आ गया? तो ऐसा जो ज्ञान, यहां पे क्या कहा, ज्ञान। अब ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह ज्ञान किसे कहते? देखो यहां पे क्या शब्द का प्रयोग किया, दो शब्द का, कि इसलिए ज्ञान, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने आत्मा जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में, उसका स्वरूप क्या बताया, जानन क्रिया। अबे ध्यान से सुनो, बहुत गजब की बात है, ये विवक्षा आपको इसी गाथा में मिलेगी, दूसरी किसी गाथा में नहीं मिलेगी आपको ये विवक्षा। ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने आत्मा, आ गया, जो कि माने कौन, ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, माने जानन क्रिया को यहां बनाया आधार, और उसमें प्रतिष्ठित कौन, कि उसमें प्रतिष्ठित ज्ञान, तो वो हुआ आधे। जानन क्रिया ये द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय है, तो पर्याय आधार हुई ना, है ना, पर्याय आधार हुई और ज्ञान आधे ही हुआ, ऐसा हुआ ना, ऐसा हो गया सच में नहीं हुआ? दो उत्तर ही दो ही है, हां या ना, दोनों में से एक एक पे टिक करोगे तो राइट होगा। अब वो टिक अगर अपन समझ के करेंगे तो भी, और बिना समझ के करेंगे तो भी कभी कभी तीर में तुक्का लग जाता है ना, ऐसा नहीं। देखो भाई, यहां पर शैली दूसरी है, यहां पर वो द्रव्य स्वभाव, वो भगवान आत्मा, भगवान आत्मा तो अनादि से है, लेकिन जिस ज्ञान जिसमें, जिस जानन क्रिया में वो जानने में आया, भगवान आत्मा प्रसिद्ध किसमें हुआ, ध्रुव की प्रसिद्धि कभी ध्रुव में नहीं होती, समझो जरा, ध्रुव की प्रसिद्धि ध्रुव में नहीं होती, तो जिसमें वो प्रसिद्ध हुआ, जिसमें प्रसिद्ध हुआ उसको कहा जानन क्रिया, और जो प्रसिद्ध हुआ उसे कहा ज्ञान माने आत्मा। तो जिसमें प्रसिद्ध हुआ वो आधार, और जो प्रसिद्ध हुआ वो आधे, ये शैली यहां पर ली है ना। इसको दो तरह से अपन समझ सकते हैं। मूल में तो जानन क्रिया का मतलब होता है श्रद्धा ज्ञान चारित्र की निर्मल परिणति, है ना, स्व सन्मुख ढली हुई, जो निर्मल परिणति, जो स्व सन्मुख ढली हुई है, कि वो स्व सन्मुख ढली हुई निर्मल परिणति में भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो रहा है। और एक दूसरे तरह से भी भगवान आत्मा हमको निरंतर प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन हम निरंतर आंख बंद करके बैठे हैं। क्या मतलब इसका, कि भगवान आत्मा जानन स्वभाव है, और जानन स्वभाव को प्रसिद्ध करती हुई जानन क्रिया रूप परिणति हर समय हो रही है। किस समय जानन क्रिया रूप परिणति, जानन 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 जानन, निर्मल की बात नहीं कर रहा अभी मैं, दूसरी तरह से लेंगे ना, अपन समझने इस बात को कि जानन, देखो जानन स्वभाव है ना, तो स्वभाव को प्रसिद्ध करने वाली परिणति हर समय हो रही है, और उस परिणति में प्रति समय जानन स्वभाव ही प्रसिद्ध हो रहा है, और हम प्रति समय उस जानन स्वभाव का निषेध कर रहे हैं। आत्मा मुझे जानने में नहीं आता, आत्मा मुझे जानने में नहीं आता, आत्मा मुझे जानने में नहीं आता। आचार्य कहते तुझे आत्मा ही जानने में आता है, 17-18 का था वो। तो ऐसी बात होगी कि एक लड़का पीछे पीछे बैठा था, अब गुरुजी ने कहा, गुरुजी पढ़ा रहे थे, गुरुजी ने कहा कि जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे वो हाथ खड़ा करे। क्या कहा? जिसको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे वो हाथ खड़ा करे। ओ लड़का पीछे से खड़ा हो गया, गुरुजी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। गुरुजी ने कहा बेटा आजा आजा, आगे बुला करके एक जोर से, अगर तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो तूने ये कैसे कहा कि मेरी आवाज, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि मैंने कहा था जिसे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो वो हाथ खड़ा करे। तो अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो हाथ खड़ा कैसे करा? तुमने ये बात सुनकर गई तो हाथ खड़े करोगे? इसी तरह जो कहता है मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, समझ लो बात को, कितनी सी बात है, मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा, कि मुझे आत्मा जानने में नहीं आ रहा ये किसे जानने में आ रहा है ये बताओ जरा। जिसे ये जानने में आ रहा है यही तो आत्मा है ना? हर समय देखो कितनी तीव्र विराधना अपन लोग कर रहे हैं भैया, हर समय ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। ज्ञान का स्वभाव ही स्वपर प्रकाशक है, वो स्व स्वभाव को प्रसिद्ध, जो भी ज्ञान की परिणति होगी अगर वो परिणति यदि उस स्वभाव को प्रसिद्ध नहीं करे तो उसे उस स्वभाव की परिणति नहीं कह सकते। ख्याल में आएगी नहीं? पिता झलक जो पुत्र में दिखती है ना, तो उस ज्ञान परिणति का पिता कौन है? कि ज्ञान परिणति का पिता ज्ञायक परमात्मा है। तो हर समय की ज्ञान की परिणति में, जानन परिणति में वो ज्ञायक परमात्मा जानने में आता है, प्रसिद्ध होता है, लेकिन इस बात का हर समय निषेध करता है, नहीं जानने में आ रहा, 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 नहीं जानने में आ रहा है। और वो कहता है मैं जानने में आ रहा हूं, जानने में आ रहा हूं, जानने में आ रहा हूं। आत्मा घोषित, मतलब ज्ञान की परिणति में एक घोषित होता है कि आत्मा जानने में आ रहा है, और ये हर समय उसका निषेध करता है, महापाप। और जिस समय ये स्वीकार करे उसी समय श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि अनंत गुणों की निर्मल परिणतियां प्रकट होती है, उसको बोलते हैं जानन क्रिया। तीन तरह की क्रिया होती है, तीन तरह की क्रिया कौन सी होती है? एक होती है जड़ की क्रिया, एक होती है विभाव की क्रिया, और एक होती है स्वभाव क्रिया। जड़ की क्रिया का मालिक सर्वथा जड़, न अज्ञानी न ज्ञानी। विभाव क्रिया पुण्य पाप के भाव, पुण्य पाप का भाव, राग द्वेष मोह का परिणाम है ना, ये विभाव क्रिया है। कि इस विभाव क्रिया का मालिक कौन? तो उन्होंने कहा कि विभाव क्रिया का मालिक अज्ञानी। द्रव्य संग्रह पढ़ोगे ना आप, तो द्रव्य संग्रह पढ़ोगे तो उसमें जब सात तत्वों में जब कर्ता 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 पना घटित किया तो अज्ञानी को आश्रव बंध और पुण्य पाप का कर्ता कहा है। क्या कहा? अज्ञानी को किसका कर्ता कहा? आश्रव बंध और पुण्य पाप का कर्ता। क्यों? क्योंकि स्वभाव की विराधना करके वही परिणाम कर सकता है वो, ठीक है। और ज्ञानी के, ज्ञानी को संवर निर्जरा और भावना रूप से मोक्ष का भी कर्ता कहा। यह कहा है सात तत्व में घटित कर लेना, आया। और स्वभाव क्रिया का मालिक कौन? तो उन्होंने कहा कि स्वभाव क्रिया का मालिक ज्ञानी आ गया। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह जानन क्रिया का वह आया ना, देखो ये ज्ञान जो कि जानन क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है वह। अच्छा अब देखना, जानन क्रिया का, जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से, मैंने जानन क्रिया को ज्ञान से अभिन्न किया, तो जानन क्रिया को ज्ञान से अभिन्नत्व किया तो किससे ज्ञान, किससे ज्ञान का अभिन्नत्व सिद्ध हो गया? कि करोति क्रिया, क्रोधादि क्रिया, विभाव क्रिया, वो ज्ञान से सर्वथा भिन्न, जड़ की क्रिया की तो बात ही नहीं, वो तो बाउंड्री के बाहर आ गया। तो होने से ज्ञान में ही है, क्या कह रहे हैं कि जानन क्रिया का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने से वह जानन क्रिया का ज्ञान से अभिन्नत्व होने से ज्ञान में ही है। और क्रोधादिक, क्रोधादिक जो कि क्रोधादिक क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, मतलब क्रोधादि क्रिया का स्वरूप क्या, कि क्रोधादि क्रिया रूप जो क्रोधादि क्रिया है ना, कि क्रोधादि है ना, कि वो क्रोधादि जो कि क्रोधादि क्रिया रूप अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है, वह क्रोधादि क्रिया का, क्रोधादि क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के, होने के कारण क्रोधादिक में ही है, उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। ये बात आई थी ना, तो क्या कहा, कितना किस शब्द का प्रयोग किया कि क्रोधादिक क्रिया, वो क्रोधादिक क्रिया का क्या लिया, किसके साथ में अभिन्न, क्रोधादिक क्रिया, क्रोधादिक क्रिया का क्रोधादि से अभिन्नत्व होने के कारण। और आपने अभी कल का और परसों का गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना हो, निर्जरा अधिकार का प्रवचन आया था ना, राग नामक कर्म का उदय, कि एक क्रोधादि क्रिया, तो क्रोधादि क्रिया का अभिन्नत्व किसके साथ, तो उन्होंने कहा क्रोधादि के साथ। तो वहां क्रोधादि क्रिया और क्रोधादिक, तो क्रोधादि क्रिया माने क्या, कि ये राग द्वेष मोह का परिणाम, और इसका अभिन्नत्व किसके साथ, कि इसका अभिन्नत्व उस जाति के कर्म के साथ। आ गया पॉइंट समझ में, आ गया, आ गया। तो उसके साथ अभिन्नत्व होने के कारण वो क्रोधादिक में ही है, माने तुमको अगर क्रोधादि क्रिया की खोज करना हो तो क्रोधादि क्रिया को क्रोधादि में खोजना, उस कर्म के साथ उसका अभिन्नत्व स्थापित किया, कि तुम उसमें खोजना, भगवान आत्मा में गलती से भी क्रोधादि को खोजने मत आना। क्यों, क्योंकि भगवान आत्मा और क्रोधादि ये दो न्यारे न्यारे स्वरूप हैं। जानन क्रिया में भगवान आत्मा को खोजना, भगवान आत्मा कहां मिलेगा, कि भगवान आत्मा मिलेगा जानन क्रिया में, है ना। और क्रोधादि कहां मिलेंगे, कि क्रोधादि मिलेंगे क्रोधादि में। भगवान आत्मा में क्रोध नहीं मिलेगा, क्रोध माने सारा विभाव का परिणाम परिवार, कि वो नहीं मिलेगा। और क्रोधादि में भगवान आत्मा का कोई अंश वो नहीं मिलेगा। जो जहां है उसको आप वहीं खोजो तो वो मिलेगा, क्रोधादि को क्रोधादि में और भगवान आत्मा को जानन क्रिया, इस तरह खोजोगे तो मिलेगा। मतलब भगवान आत्मा कहां, भगवान आत्मा कहां प्रसिद्ध हुआ, कि भगवान आत्मा जानन क्रिया में प्रसिद्ध हुआ। देखो है तो ध्रुव सारे जिनागम में द्रव्य स्वभाव को आधार और उसकी परिणति को आधे ही बोला जाता है, एक नहीं बोला जाता है ना, लेकिन यहां शैली में परिवर्तन, कि जिस परिणति में भगवान आत्मा प्रसिद्ध हुआ उस परिणति को आधार कहा, और जो प्रसिद्ध हुआ उसे आधे ही कहा। यह इस समय सार की इसी गाथा में यह शैली आपको मिलेगी, है ना। ऐसे हालांकि और भी जगह ऐसे प्रयोग तो हुए हैं, दर्शन ज्ञान चरित्र में अपनी आत्मा को स्थापित कर, दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थापित कर का मतलब क्या है, मतलब दर्शन ज्ञान चरित्र में आत्मा को स्थापित कर, या आत्मा में दर्शन ज्ञान चरित्र को स्थापित कर, शब्द तो होना तो ये चाहिए ना कि आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चरित्र की पर्याय स्थापित हो, अर्थात वो अपनापन करे। आचार्य भगवान क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? दर्शन ज्ञान चरित्र में आत्मा को स्थापित कर। क्या मतलब? कि आज तक तेरी आत्मा में श्रद्धा, तेरी आत्मा में ज्ञान, तेरी आत्मा में चरित्र था, लेकिन गजब की बात यह कि तेरी श्रद्धा में आत्मा नहीं था, तेरे ज्ञान में आत्मा नहीं था, तेरे चरित्र में आत्मा नहीं था। आज तक तूने अपनी श्रद्धा ज्ञान चरित्र का विषय आत्मा को नहीं बनाया, इसलिए तेरे को आत्मा होने पर भी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं हुई। जिस श्रद्धा ज्ञान चरित्र का विषय आत्मा बना, उस श्रद्धा ज्ञान चरित्र की वर्तमान दशा में भगवान आत्मा प्रसिद्ध होता है, तो इसलिए श्रद्धा ज्ञान चरित्र की वर्तमान दशा को आधार कहा जाता है और उसमें प्रसिद्ध होने वाले भगवान आत्मा को आधेय कहा जाता है। ये शैली ली है गुरुदेव ने भी लिया। आप प्रवचन पढ़ोगे ना, जितनी बार के प्रवचन है उतनी एक बात देखो, एक चीज अपना अपन लोगों का भाग्य है कि आज अपने को कम से कम 13 नंबर के 15, 16, 17, 18, 19 छह बार के गुरुदेव श्री के प्रवचन सीडी में उपलब्ध है। मैं तो ऐसा, बल्कि प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि जैसे एक गाथा चल रही है हमारी, थोड़ा समय लगेगा, नहीं एक गाथा हमारी चल रही है तो एक गाथा चल रही है तो हमने पहले 13वीं बार के प्रवचन उसी गाथा पे लगाए, उसके बाद हमने 14वीं बार के है नहीं हमारे पास, 15वीं बार के लगाए, 16वीं बार के सुनो, 17वीं बार के सुनो, 18वीं बार के सुनो, 19वीं बार के सुनो, एक एक गाथा पे 6-6 बार के प्रवचन, कम से कम जो महत्वपूर्ण गाथाएं हैं ना, उन महत्वपूर्ण गाथाओं के प्रवचन तो इसी तरह सुनना चाहिए। हो सकता है कोई न्याय गुरुदेव ने किस प्रवचन में क्या होता है, देखो वाणी का योग और सामने वाले श्रोताओं की पात्रता अलग अलग प्रकार की होती है, तो एक ही गाथा गुरुदेव लेंगे अलग अलग प्रवचनों में तो कभी कोई एंगल मुख्यता, विषय तो पूरा स्पष्ट होता है नहीं, कभी किसी एंगल की ज्यादा मुख्यता होती है, कभी किसी एंगल की ज्यादा मुख्यता हो जाती है। एक ही प्रवचन, एक ही गाथा के अलग अलग बार के प्रवचनों में भी आपको नया नया प्रमेय मिलेगा, तो वही गाथा में जो है, लेकिन अलग अलग नया नया चिंतन, क्योंकि ज्ञानी का भी क्या होता है कि जब पहले 13वीं बार के प्रवचन किया तब, और 19वीं बार की प्रवचन किया तब, 13वीं बार के प्रवचन है सन 1961-62 के, और 19वीं बार के प्रवचन है 79-80 के, बोलो तो अब 20 साल का जो अंतर पड़ा, तो 20 साल में और नया 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 माल निकाला होगा कि नहीं निकाला होगा, 20 साल का चिंतन मनन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो शुरुआत और यहां तक, इस तरह अगर हम पद्धति बनाएंगे अपनी गुरुदेव के प्रवचनों को सुनने की, किसी तरह का कोई शल्य हमारे चित्त में नहीं रह सकता। हालांकि गुरुदेव के तो हर प्रवचन में स्पष्टीकरण है, लेकिन फिर भी हमारी योग्यता भी है कि कोई किसी बात पर हमारा कभी ध्यान जा पाता है, कभी नहीं जा पाता, तो अलग अलग बार के प्रवचनों को अपन सुनने का प्रयास करेंगे ना, अपने को एक एक गाथा का मर्म स्पष्ट होगा। और यह बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती कि समय सार आदि परमागमों का अर्थ बिना गुरुदेव के सुने, उनके अर्थ को मानसिक ज्ञान में भी हम सही रूप से समझ पाएंगे, ये कल्पना भी मत करना। और नहीं हो तो एक प्रयोग आपको बता देता हूं, वो करके देख लेना। आप कोई गाथा का कोई अर्थ आप गुरुदेव का मत सुनो, पहले आप अपनी गाथा वो पढ़ो, और पढ़ करके उसमें से जो जो अर्थ आपको भासित होता है आप अपनी डायरी में लिख लो कि मुझे इस शब्द का ये अर्थ लगता है, ये लगता है, वो पूरा आप अपने हिसाब से लिखो, और बाद में गुरुदेव का प्रवचन सुन लेना, अपनी बुद्धि मप जाएगी। वो आता है ना श्रीमद जी की भक्ति में, मापवाती निज मति मपाई में मानी छे, तो पता लग जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं, है ना। मैं तो कभी कभी बोलता हूं, मैंने कहा इन पंडितों का मान भी तभी गलेगा जब गुरुदेव का सुनेंगे। गुरुदेव का प्रवचन हम पंडितों के लिए भी मानस्तंभ है, समझ लेना। एक मान गल जाएगा एक मिनट में, हम जानते हैं, हमें आता है, हमें ख्याल है, हम सब समझते हैं, हमें शब्दों के अर्थ, अरे शब्द तो वही होते हैं लेकिन उस शब्द में क्या अर्थ है, ये ज्ञानी की गंभीरता के बिना पता नहीं पड़ता है। समझ आ गया? तो वो यहां पे कह रहे हैं क्रोधादि में ही है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है। ज्ञान का स्वरूप, देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञान का स्वरूप जानन क्रिया है, इसलिए ज्ञान आधेय है। ज्ञान माने आत्मा, आधेय है और जानन क्रिया आधार है, बराबर। जानन क्रिया आधार होने से यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही आधार है।
कि ये क्या मतलब हुआ कि भाई साहब आधार आदेय का भेद ही नहीं है।
आधार आदेय, ये तो आधार और आदेय का भेद करके समझाया कि उस जानन क्रिया में मैं जानन क्रिया और ये मेरा स्वभाव, कि ऐसा भेद है क्या?
तो क्या वो कहे कि ज्ञान ही आधार है,
क्योंकि जानन क्रिया और ज्ञान
भिन्न नहीं है।
आ गया, आ गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान ज्ञान में ही है, इसी प्रकार क्रोध क्रोध में ही है। एक बात देखना, और क्रोधादिक में देखना, क्रोधादिक में कर्म में या नो कर्म में ज्ञान नहीं है, तथा ज्ञान में क्रोधादिक कर्म या नो कर्म नहीं है, क्योंकि उनके परस्पर अत्यंत स्वरूप विपरीतता होने से, अर्थात ज्ञान का स्वरूप और क्रोधादिक का तथा कर्म नो कर्म का स्वरूप क्या लिखा, अत्यंत विरुद्ध होने से। इससे ज्यादा क्या बोलेंगे, क्रोधादि और फिर उसके बाद उन्होंने वो लिखा विरुद्ध होने से उनमें परमार्थ वूर्त आदे आधार आदे संबंध नहीं है। ये किस तरह नहीं है, ये क्या है इसमें, इसकी और विस्तृत चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में अपन करेंगे।
आज रात्रि नो कार्यक्रम रात्रि 7:10 से 7:40 जिनेन्द्र भक्ति तथा आरती 7:40 से 8 पूज्य बहन श्री विजु तत्व चर्चा अने 8 से 9 शास्त्र स्वाध्याय श्रीमद जी ना वचनामृत पर बिजुलिया जी द्वारा ये प्रमाण रात्रि नो